नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 28 मई 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, वैश्विक महामारी के अंत के लिए वैक्सीन की न्यायसंगत उपलब्धता पर जोर। सितंबर महीने तक हर देश में 10% आबादी के टीकाकरण का आह्वान। कोविड-19 महामारी की चपेट में भारत, दूसरी लहर का रूप बहुत अलग, बहुत घातक। इसराइल और फलस्तीन के बीच निरर्थक हिंसा और लोगों की पीड़ा के अंत का एकमात्र रास्ता है राजनीतिक समाधान। यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी की चेतावनी, दुनिया वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के नजदीक। यूएन शांति रक्षकों के साहस और समर्पण को श्रद्धांजलि और एक खास बातचीत। दक्षिण सूडान में यूएन मिशन में तैनात भारतीय शांति रक्षक मेजर तेजस्मिता मंजुनाथ से। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात कोरोना वायरस संकट की। इस सप्ताह विश्व स्वास्थ्य असेंबली की बैठक हुई और मोटे तौर पर यह सहमति है कि कोविड-19 महामारी के अंत के लिए वैक्सीनों को न्यायसंगत ढंग से उपलब्ध कराया जाना महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने जिनीवा में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि अब तक 35 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को $22 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है और वायरस के नए रूप और प्रकार उभरने से चिंता व्याप्त है। ये स्पष्ट है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। महानिदेशक गेब्रियसिस ने कहा कि उन्होंने विश्व नेताओं से टीकाकरण के प्रयासों को मजबूती देने की अपील की है ताकि इस साल सितंबर महीने तक हर देश में कम से कम 10% और साल के अंत तक 30% आबादी को वैक्सीन मिल सके। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 74वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस संकट से निपटने और सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए साहसिक निर्णयों को लिया जाना होगा। यूएन प्रमुख ने अपने संदेश में भावी खतरों के प्रति आगाह किया।
From the start of the COVID-19 pandemic, I have warned of the dangers of two-speed global response. Sadly, unless we act now, we face a situation in which rich countries vaccinate the majority of their people and open their economies, while the virus continues to cause deep suffering by circling and mutating in the poorest countries.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि वैश्विक जवाबी कार्रवाई दो अलग अलग रफ्तार से आगे बढ़ रही है जिसमें खतरे निहित हैं। उन्होंने कहा कि हमने अगर अभी कार्रवाई नहीं की तो हमारे सामने एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें धनी देश अपनी अधिकांश आबादी का टीकाकरण करने के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोलेंगे, जबकि वायरस निर्धनतम देशों में अपना रूप और प्रकार बदलकर फैलना जारी रखेगा, जो गहरी पीड़ा की वजह बन जाएगा। उन्होंने आगाह किया कि संक्रमण में तेजी और मामलों में उभार से लाखों लोगों की जान जा सकती है और वैश्विक आर्थिक पुनर्बहाली की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। कोरोना वायरस के अब तक 16,85,00,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,86,000 मामले सामने आए हैं और 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में वैश्विक महामारी की दूसरी लहर और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा किए जा रहे सहायता प्रयासों पर ज्यादा जानकारी के लिए यूएन न्यूज हिंदी ने बात की भारत में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन से। दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण जिस रफ्तार से फैला उसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर का स्वरूप पहली से बहुत अलग था। यही वजह है कि तैयारियों के बावजूद इसकी तेज गति के कारण इससे निपटने में मुश्किलें आईं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब भारत में हालात बेहतर हैं।
We're coming out of it now slowly.
अब हम दूसरी लहर से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। देश के कुछ हिस्से अभी भी बुरी तरह पीड़ित हैं। अन्य हिस्सों में मामलों की संख्या में कमी आई है। हर दिन लगभग 3,500 लोगों की मौत हो रही है, इसलिए यह अभी भी गंभीर है। मगर मुझे लगता है कि मोटे तौर पर हम इसकी चरम को पार कर नीचे की ओर रुख करने लगे हैं। मुझे लगता है कि इसने हम सभी को विनम्र बनाकर तीसरी लहर का सामना करने के लिए कई सबक सिखाए हैं।
भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन के शब्द। उन्होंने बताया कि सभी को दूसरी लहर की आशंका थी और उसके लिए तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन भारत में टीकाकरण शुरू होने के साथ ही लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी।
During the course of last year, as you know, vaccines were produced in record time.
जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष के दौरान वैक्सीनों का रिकॉर्ड समय में उत्पादन हुआ और भारत दो महत्वपूर्ण टीकों का उत्पादन कर रहा था। इस साल जनवरी में टीकाकरण भी शुरू हो चुका था, इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी भावना थी कि अब टीके लगाए जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास इस घातक महामारी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। मेरे ख्याल से इसी कारण थोड़ी ढिलाई हो गई। इसके अलावा वैसे तो भारत ने पहली लहर में महामारी विज्ञान संबंधी जवाबी कार्रवाई क्षमताओं का विस्तार किया था और इसमें से कुछ पर इस साल की शुरुआत में कार्य भी आरंभ कर दिया गया था, लेकिन जिस गति से दूसरी लहर आई उसी गति से जवाबी कार्रवाई के विस्तार का समय नहीं मिला।
भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन के शब्द। संयुक्त राष्ट्र कोऑर्डिनेटर ने कहा कि इससे सबक लेते हुए संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारियों को पुख्ता बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो बड़े पैमाने पर तुरंत टीकाकरण करना जरूरी है, और हालांकि फिलहाल टीकों की आपूर्ति में कुछ कमी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए भारत में सभी स्तरों पर अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं और यूएन उन प्रयासों में पूरी तरह सहयोग दे रहा है।
हमने शुरू से ही राष्ट्रीय जवाबी कार्रवाई में सहयोग किया है। हम भाग्यशाली हैं कि भारत में WHO की व्यापक मौजूदगी है। उन्होंने देश भर में लगभग 2600 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया है जो संचारी रोगों के प्रबंधन में अनुभवी थे, और उन्हें तुरंत COVID-19 पर काम करने के लिए लगाया जा सका। अब इस दूसरी लहर के साथ हमने न केवल पहले से चल रहे कार्यों को मजबूती दी बल्कि मौजूदा जरूरतों के मुताबिक भी सहायता प्रदान की। हमने 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटरों का आयात किया। कुछ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने 72 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने पर काम किया। हमने RT-PCR परीक्षण किटों व कोल्ड चेन उपकरण समेत अन्य सामग्री की आपूर्ति की। इसके अलावा हम सामाजिक आर्थिक प्रतिक्रिया का समर्थन भी करते रहे हैं। कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां आजीविकाओं की रक्षा करने पर काम कर रही हैं।
भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन के शब्द। उन्होंने कहा कि भारत एक विशालकाय देश है और COVID-19 के खिलाफ उसकी समग्र कार्रवाई के आकलन के लिए कुल आंकड़ों पर न जाकर जमीनी स्तर पर विश्लेषण करना जरूरी है।
इसराइल और फलस्तीन के बीच निरर्थक हिंसा पर एक राजनीतिक समाधान के जरिए ही विराम लगाया जा सकता है, ये कहना है मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉर वेनिसलैंड का। उन्होंने गुरुवार को सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए चिंता जताई कि गाजा में हाल ही में हुई हिंसा के बाद से स्थानीय लोग भयभीत हैं और सदमे में हैं। इसराइल और काबिज फलस्तीनी इलाके में 11 दिनों की घातक हिंसा के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई, जिसके बाद से लड़ाई फिलहाल रुकी हुई है। मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष समन्वयक टॉर पेनिसलैंड।
These recent events have made clear once again the cost of perpetual conflict and lost hope. The challenges in Gaza, like this conflict as a whole, require political solutions.
इन हालिया घटनाओं ने एक बार फिर टकराव के जारी रहने और उम्मीद खोने की कीमत को स्पष्ट कर दिया है। टॉर वेनिसलैंड ने कहा कि गाजा में चुनौतियों और इस व्यापक टकराव के लिए राजनीतिक समाधान की ही जरूरत होगी, जिसके मद्देनजर उन्होंने सभी पक्षों से वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। इसराइल और गाजा में सशस्त्र गुटों के बीच कुछ दिन पहले हुई हिंसा हाल के वर्षों में सबसे गंभीर लड़ाई साबित हुई है। हमास और अन्य चरमपंथी गुटों ने गाजा में 4,000 से अधिक रॉकेट दागे, वहीं इसराइल ने कथित रूप से चरमपंथियों और उनके ठिकानों को 1,500 से अधिक बार निशाना बनाया। यूएन के अनुमान के मुताबिक 250 फलस्तीनियों की हिंसा में मौत हुई है, जिनमें 66 बच्चे हैं। इसराइल में 13 लोग मारे गए हैं। हिंसा की वजह से गाजा में 70,000 से अधिक लोगों को यूएन एजेंसी द्वारा संचालित स्कूलों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन राहत एवं कार्य एजेंसी के प्रमुख फिलिपे लात्सिरिनी ने पिछले सप्ताह गाजा में प्रभावित लोगों से मुलाकात के बाद कहा कि हर कोई भयभीत और सदमे में है। संयुक्त राष्ट्र और साझीदार संगठनों ने गुरुवार को पूर्वी यरूशलम, गाजा और पश्चिमी तट में लोगों की सहायता करने के लिए 9.5 करोड़ डॉलर की अपील जारी की है। इसका उद्देश्य अगले 3 महीनों में 10 लाख लोगों को सहायता प्रदान करना है। इसके तहत जरूरतमंदों को संरक्षण, स्वास्थ्य, जल, साफ सफाई, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा संबंधी मदद मुहैया कराई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को न्यूयॉर्क मुख्यालय में उन सभी शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने वर्ष 1948 से यूएन के झंडे तले वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। यूएन प्रमुख ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति रक्षक दिवस से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बगैर शांति को हासिल नहीं किया जा सकता। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति रक्षक दिवस के अवसर पर शांति व सुरक्षा में युवजन की भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। यूएन महासचिव ने ध्यान दिलाया कि मध्य अफ्रीका गणराज्य से लेकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लेबनान तक यूएन शांति रक्षक हिंसा में कमी लाने और शांति कायम रखने के लिए युवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। युवा शांति रक्षक अपने साथ यूएन अभियानों में नए विचारों, उम्मीदों व ऊर्जा को साथ लाते हैं और स्थानीय आबादियों के साथ असरदार ढंग से संपर्क व संवाद स्थापित करते हैं। इससे मैंडेट के तहत प्रदर्शन को बेहतर बनाने और लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। गुरुवार को डैग हैमरशोल्ड मेडल वितरण समारोह में 44 देशों के 129 शांति रक्षकों को मरणोपरांत सम्मानित किया। इस अवसर पर कीनिया की संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक स्टेपलिन न्याबोगा को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 32 वर्षीय केन्याई शांति रक्षक ने हाल ही में सुदान के दारफूर में यूएन मिशन में अपना कार्यकाल पूरा किया है जहां लैंगिक मुद्दों पर उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें चुना गया है।
वैश्विक औसत तापमान में वार्षिक बढ़ोतरी पूर्व औद्योगिक काल में तापमान के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने की संभावना लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम विज्ञान एजेंसी ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट के साथ चेतावनी भी जारी की है कि ऐसा अगले 5 वर्षों के भीतर ही हो सकता है। रिपोर्ट दर्शाती है कि इस अवधि के दौरान तापमान में बढ़ोतरी के इस स्तर को छूने की संभावना 40% है और ये संभावना लगातार प्रबल हो रही है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
इससे पहले अप्रैल में जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 के मुताबिक वर्ष 2020 अब तक के 3 सबसे गर्म सालों में शामिल है जब पूर्व औद्योगिक काल में तापमान के स्तर की तुलना में वैश्विक औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था। गुरुवार को जारी अपडेट इस रुझान की पुष्टि करता है। अगले 5 वर्षों में वार्षिक वैश्विक तापमान के कम 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक सीमित रखने को सभी देशों के लिए एक लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मानवता के लिए संभावित खतरे से बचाव और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना था। पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तक सीमित रखने की पुकार लगाई गई है। बताया गया है कि वर्ष 2021 से 2025 की अवधि में 90% संभावना है कि कम से कम कोई एक वर्ष अब तक का सबसे गर्म साल साबित होगा। ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट नामक रिपोर्ट दर्शाती है कि ऐसी स्थिति में वर्ष 2016 पीछे रह जाएगा जो कि अब तक सबसे गर्म साल रहा है। यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी के महासचिव पेटरी टॉलस ने कहा कि ये एक और नींद से जगा देने वाली घंटी है जो आगाह करती है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कटौती लाने और कार्बन तटस्थता को हासिल करने के संकल्पों के लिए कार्रवाई तेज करने की आवश्यकता है।
शनिवार 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति रक्षक दिवस है और इस बार स्थायी शांति व सुरक्षा की स्थापना में युवजन की भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने बात की दक्षिण सूडान में यूएन मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के तौर पर सेवारत और भारतीय शांति रक्षक मेजर तेजस्मिता मंजुनाथ से। यूएन न्यूज हिंदी ने उनसे पूछा कि कोविड-19 संकट काल में यूएन मिशन का हिस्सा होना और परिवार से दूरी कैसा अनुभव है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भारतीय सेना में हमें जो ट्रेनिंग मिलती है वो इसी के लिए हमें इस हिसाब से ट्रेनिंग मिलता है कि हम कैसे भी चुनौतियां हो, कैसे भी वो एक सिचुएशन हो, हम उसमें अपना एक कंपोजर मेंटेन करें, हम उसमें अपना बाकी कुछ भी पर्सनल दिक्कतें हैं उसको भूल के हमारे प्रोफेशन की तरफ हम अपना 100% दे सके। तो इसी ट्रेनिंग के कारण से अभी हम यहाँ पे, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवान यहाँ पे है, हम ये सिचुएशन को कोप अप कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये कोरोना महामारी चलते हुए हमें कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि घर वाले कैसे हैं और उनकी सुरक्षा हो या खुद की सुरक्षा हो, सबका एक दिमाग में वो चिंता रहता है। लेकिन जो हमें ट्रेनिंग मिला है वो हमें ये सिखाया है कि चाहे कैसे भी हो सिचुएशन, हमें उससे ऊपर उठ के हमारे काम के लिए हमें फोकस करना है। और एक ये यूनाइटेड नेशन का ये पीस कीपिंग जो मिशन है, ये एक अपने आप में एक ऐसा अनोखा एक कॉन्सेप्ट है जो हमें एक मौका देता है कि हम अपना जो स्किल्स है, हमारा जो अनुभव है, उसको इस्तेमाल करके हम कैसे एक पॉजिटिव एक चेंज हम यहाँ पे ला सकते हैं।
यूनाइटेड नेशंस में सिस्टम में और खासतौर पर पीस कीपिंग मिशंस में काफी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो महिला शांति रक्षक है उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। यूएन महासचिव ने भी इस बात को कई बार उठाया है। आपके निजी अनुभव में ये भागीदारी को बढ़ाना महिला शांति रक्षकों की, चाहे वो वर्दीधारी महिला शांति रक्षक हैं या सैन्य हैं, कितना जरूरी है?
आजकल महिलाएं हर फील्ड में एक अपना बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक मौका चाहिए और वो एक और बेहतरीन तरीके से अपना एक वो कॉन्ट्रीब्यूशन हर जगह पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक अनुभव आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। एक हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन पेट्रोल के लिए गए थे, जहाँ पे हम एक कोई थोड़ा दूर गांव में जाके एक हफ्ते के लिए रहे। वहाँ पे टेंट्स हमने पिच किया था, वहाँ रहे और हर दिन हम अलग अलग गांव जाके आसपास के हम लोगों से मिल रहे थे। तो वहाँ पे एक गांव में जब गए तो कुछ महिलाएं वहाँ पे और कुछ बच्चियां भी थी, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से अपना राशन लेके वापस आ रही थी। तो हमें देख के वो रुक गए, हम भी रुक के उनसे बात करने लगे। तो वो मुझे देख के बहुत खुश हुए और बोले कि एक महिला ड्राइव कर रही है एक गाड़ी और एक शांति एक पीस कीपर के नाते वो काम कर रही है, उसको देख के बहुत खुश हुए। तो मैं बात करते करते उनको बोला कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आप अपने बच्चियों को पढ़ाए लिखाए तो आपके जितने भी देश के प्रॉब्लम्स है उसको हल करने में उनके एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो वो बोले जी मैडम, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चियां आप जैसे बने। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक अवार्ड जैसा मुझे लगा कि हाँ, हम कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो ऐसे जब महिलाएं किसी भी एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो वो एक ज्यादा संवेदनाशील होती है और जो एक्चुअल उनका जो वहां पे संघर्ष के टाइम में जो महिलाएं बच्चियां हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है और वो सबके सामने वो बोल भी नहीं पाती है। तो ऐसे मौकों, ऐसे समय में जो महिला अधिकारी होती है या महिला जो सिविलियंस होंगे या कोई भी पीस कीपर हो, वो एक बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इस दौरान जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने ये शुरू किया है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हमें यूनाइटेड नेशंस में लाना है, ये एक हमारे पूरे एक मिशन के लिए जो हमारा एम है उसको हमें अचीव करने के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा योगदान महिलाएं दे सकते हैं।
दक्षिण सूडान में यूएन मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक मेजर तेजस्मिता मंजुनाथ। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।